एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसी किताब जो शायद कई कलाकारों, डिजाइनरों, मतलब जो भी क्रिएटिव काम करते हैं उनके मन की बात कहती है।
बिल्कुल, किताब का नाम है आर्ट इंक द एसेंशियल गाइड फॉर बिल्डिंग योर करियर एज एन आर्टिस्ट, और लेखिकाएं हैं लीसा कॉन्गडन और मैग मटेओ इलास्को। ये किताब दरअसल उन लोगों के लिए है जो अपनी कला, अपनी रचनात्मकता को सिर्फ एक जुनून नहीं बल्कि एक टिकाऊ, फायदेमंद करियर बनाना चाहते हैं।
और ये मौजू आज के दौर में कितना जरूरी है ना?
हाँ,
बहुत ज्यादा।
हम सब जानते हैं या सुनते हैं कि कितने प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो आर्थिक रूप से शायद उतना सफल नहीं हो पाते।
हाँ, हुनर तो होता है,
हुनर की कोई कमी नहीं,
पर वो समझ नहीं होती कि भाई अपने काम को दुनिया तक कैसे पहुँचाए, उसकी सही कीमत कैसे मिले
या उससे एक नियमित आय कैसे बने।
बिल्कुल।
तो ये किताब उस पुरानी सोच को, वो स्टार्विंग आर्टिस्ट वाली छवि को चुनौती देती है।
सही कहा।
ये कहती है कि भाई कला और पैसा साथ साथ चल सकते हैं, कोई विरोध नहीं है।
बिल्कुल, और सिर्फ चल ही नहीं सकते बल्कि
एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। किताब का यही मानना है कि अगर आपकी बिजनेस की समझ अच्छी है तो वो आपकी रचनात्मकता को दबाएगी नहीं, उसे और आजादी देगी, क्योंकि फिर आपको पैसों की चिंता कम होगी, है ना?
हाँ, ये बात तो है। तो मतलब ये चर्चा उन सब के लिए है जो अपने पैशन से, अपने जुनून से सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक स्थायी आजीविका भी चाहते हैं।
बिल्कुल, ये एक तरह का रोड मैप है अपने जुनून को पेशे में बदलने का।
अच्छा, तो फिर लेखिकाओं के बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है।
हाँ जरूर, इस किताब की एक बड़ी ताकत लेखिकाएं खुद हैं। पहली लीसा कॉन्गडन।
हाँ,
उनकी कहानी तो बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने कोई फॉर्मल आर्ट ट्रेनिंग नहीं ली थी और अपना करियर भी देर से शुरू किया, करीब 31 की उम्र में।
अच्छा।
और आज वो एक जानी मानी बेहद सफल चित्रकार और उद्यमी है।
वाह, तो उनका अपना सफर ही इस बात का सबूत है कि ये मुमकिन है।
बिल्कुल, कि आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। और दूसरी लेखिका है मैग मैथ्यू इलास्को।
हाँ।
वो एक जानी मानी डिजाइनर, लेखक और क्रिएटिव बिजनेस सलाहकार हैं। उनकी खासियत ये है कि वो बिजनेस की जो मुश्किल लगने वाली बातें होती है ना,
जैसे फाइनेंस, लीगल,
हाँ, ब्रांडिंग, फाइनेंस, कानूनी चीजें, इन सबको वो कलाकारों और डिजाइनरों के लिए एकदम आसान, समझने लायक भाषा में बताती हैं।
मतलब प्रैक्टिकल सलाह देती हैं।
बिल्कुल, वो समझती हैं कि क्रिएटिव लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है।
तो ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक तरफ लीजा का खुद का अनुभव जो उन मुश्किलों से गुजरी हैं।
हाँ, जमीनी हकीकत जानती हैं,
और दूसरी तरफ मैग की वो रणनीतिक समझ, बिजनेस की जानकारी।
सही, तो ये दोनों मिलकर वो जो एक दीवार सी लगती है ना कला और बिजनेस के बीच, उसे गिरा देती हैं। दिखाती हैं कि कैसे दोनों साथ चल सकते हैं, फल फूल सकते हैं।
ये सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि असल जिंदगी के अनुभव पर आधारित हैं।
बिल्कुल, आजमाए वे रास्ते हैं।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब के मूल सार पर। ये आर्ट इंक आखिर है क्या?
देखिए, मूल रूप से ये एक गाइड है, खास तौर पर विजुअल आर्टिस्ट्स के लिए, जैसे पेंटर, इलस्ट्रेटर, डिजाइनर, फोटोग्राफर, क्राफ्ट बनाने वाले। ये सिखाती है कि अपनी कलात्मक प्रतिभा को एक ऐसे बिजनेस में कैसे बदलें जो सिर्फ चले नहीं बल्कि बढ़े भी,
और वो भी अपनी कलात्मक पहचान को बचाए रखते हुए।
ये जरूरी है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
किताब इसी बात पर जोर देती है।
ये
उस दिक्कत को सीधे पकड़ती है जहाँ कलाकार अच्छा काम तो बना लेते हैं पर फिर,
हाँ, फिर रुक जाते हैं कि भाई आप इसकी कीमत क्या रखें,
मार्केटिंग कैसे करें, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है, बिजनेस रजिस्टर कैसे करें।
हाँ, ये सारे सवाल।
ये किताब इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है जो एक कलाकार को उद्यमी बनने के सफर में मिलते हैं।
तो ये एक पूरी यात्रा की तरह है ना?
बिल्कुल, ये शुरू होती है आपकी सोच बदलने से कि आप सिर्फ एक कलाकार नहीं हैं, आप एक क्रिएटिव उद्यमी भी हैं।
अच्छा।
फिर ये आपको अपनी कलात्मक आवाज पहचानने में मदद करती है, आपके आइडियल ग्राहक कौन हो सकते हैं ये समझने में, कीमत तय करने के तरीके सिखाती है, कानूनी चीजें जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कॉपीराइट, इनको समझाती है, फाइनेंस कैसे मैनेज करें,
और ये सब इस तरह से कि आपकी क्रिएटिविटी बनी रहे।
हाँ बिल्कुल, ये उस डर को भी समझती है जो कई कलाकारों को होता है, सेलिंग आउट का डर, कि कहीं पैसा कमाने के चक्कर में अपनी कला से समझौता ना कर लें।
सही बात है, तो चलें इन विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। किताब के अंदर क्या है?
हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो किताब कहती है वो है मानसिकता में बदलाव,
माइंडसेट शिफ्ट।
बिल्कुल, वो जो एक धारणा बनी हुई है ना कि कला तो पवित्र है और पैसा कमाने से वो मैली हो जाएगी,
हाँ।
किताब इस सोच को तोड़ती है। वो कहती है कि बिजनेस की समझ असल में आपकी रचनात्मकता को आजाद करती है।
ये कैसे?
सोचिए, अगर आपको पैसों की चिंता कम हो तो क्या आप ज्यादा प्रयोग करने, ज्यादा रिस्क लेने,
हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स लेने,
या बस अपने मन का काम करने के लिए ज्यादा स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे?
बात तो सही है, वित्तीय स्थिरता एक तरह का आत्मविश्वास देती है।
बिल्कुल, और इसी सोच के बदलाव से जुड़ा है अगला कदम, अपनी कलात्मक दृष्टि और मूल्यों को पहचानना।
मतलब मैं क्या बनाता हूँ और क्यों बनाता हूँ।
हाँ, आपकी कला क्या है, आपकी प्रेरणा क्या है, आपके काम में ऐसा क्या खास है जो और कहीं नहीं मिलेगा। किताब कहती है कि आपकी यही मौलिकता, आपकी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी बाजार में आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
दूसरों की नकल करने से बेहतर है अपनी आवाज ढूंढना।
बिल्कुल, और यहाँ किताब की एक बहुत अच्छी पंक्ति है, आपकी रचनात्मक आवाज आपका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, आप जितने प्रामाणिक होगे आपका व्यवसाय उतना ही विशिष्ट बनेगा।
बहुत खूब। अच्छा, तो मान लीजिए मैंने अपनी आवाज पहचान ली, अब
सवाल है कि इसे सुनेगा कौन।
हाँ, मेरे दर्शक कौन है?
यहीं पर आता है मार्केट रिसर्च और अपने ऑडियंस को समझना। आपका काम किसके लिए है, कौन लोग हैं जो आपके काम से जुड़ेंगे, उसे पसंद करेंगे, खरीदेंगे।
इसके लिए क्या तरीके सुझाती है किताब?
बहुत प्रैक्टिकल तरीके, जैसे सोशल मीडिया पर देखें कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, अपने मौजूदा ग्राहकों से बात करें, देखें कि आपके जैसे दूसरे कलाकार क्या कर रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है।
मतलब जासूसी नहीं करनी है?
नहीं नहीं, जासूसी नहीं, बस अपने लिए सही जगह ढूंढनी है ताकि आपकी आवाज सही लोगों तक पहुंचे।
ठीक है, तो मानसिकता बदल ली, अपनी आवाज पहचानी, दर्शक भी समझ लिए, अब प्रैक्टिकल चीजें।
हाँ, अब आते हैं ठोस कदमों पर, जैसे अपने बिजनेस का ढांचा चुनना। क्या आप अकेले काम करेंगे, जिसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, या फिर एक कंपनी रजिस्टर करेंगे, जैसे LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसके अपने फायदे हैं, खासकर जोखिम कम करने के लिए।
फिर वो कानूनी बातें, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉपीराइट्स,
हाँ, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा,
ये सब सुनने में शायद उबाऊ लगे,
और है बहुत जरूरी।
बहुत जरूरी,
आपके काम को, आपके अधिकारों को बचाने के लिए ये अनिवार्य है।
और फिर आता है वो हिस्सा जिससे कई लोग डरते हैं, पैसा।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
बजट बनाना, कैश फ्लो देखना, यानी पैसा कब आ रहा है, कब जा रहा है,
और सबसे महत्वपूर्ण, अपने काम की कीमत तय करना,
प्राइसिंग।
ये तो बहुत बड़ी चुनौती होती है कलाकारों के लिए, अक्सर कम कीमत लगा देते हैं। बिल्कुल, किताब इसी पर बहुत जोर देती है, वो आपको तरीके बताती है कि कीमत कैसे तय करें, जिसमें सब कुछ शामिल हो, आपकी मेहनत, आपका समय, सामान का खर्चा, स्टूडियो का किराया, जैसे ओवरहेड,
और आपका मुनाफा भी।
हाँ, मुनाफा भी। ये उस झिझक को दूर करने में मदद करती है जो पैसे मांगने में होती है।
यह किताब की एक और लाइन याद आती है जो आपने बताई थी।
हाँ, आपकी कला सिर्फ एक शौक नहीं है, ये एक व्यवसाय है, और आप अपने समय, विशेषज्ञता और रचनात्मकता के लिए उचित मुआवजे के हकदार हैं।
बिल्कुल, ये बात मन में बिठा लेनी चाहिए।
सही। अच्छा, पैसे की बात हो गई, अब उसे लोगों तक पहुंचाना कैसे है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग।
ब्रांडिंग मतलब सिर्फ लोगो नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्रांडिंग है आपकी कहानी, आपकी पहचान, आपकी कला, आपकी वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स, आप ग्राहकों से कैसे बात करते हैं, ये सब मिलकर आपका ब्रांड बनाते हैं। किताब डिजिटल मार्केटिंग पर भी अच्छी सलाह देती है, जैसे एक अच्छी वेबसाइट कैसे बनाएं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करें, ईमेल लिस्ट कैसे बनाएं,
बिना ज्यादा तकनीकी जंजाल में फंसाए।
हाँ, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से।
और मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन तो नहीं होती?
नहीं, नेटवर्किंग यानी रिश्ते बनाना दूसरे कलाकारों से, गैलरी वालों से, ग्राहकों से, ये भी उतना ही जरूरी है।
और ये रिश्ते कैसे हों?
सच्चे रिश्ते। किताब कहती है सिर्फ लेन देन वाले नहीं, याद है वो पंक्ति?
हाँ, सबसे सफल रचनात्मक व्यवसाय प्रामाणिक रिश्तों पर बनते हैं, लेन वेन पर नहीं।
बिल्कुल, जब लोग आपसे, आपकी कहानी से जुड़ते हैं, तो वो सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, वो आपके समर्थक बन जाते हैं।
सही बात है। अच्छा, इसके बाद बिक्री के तरीकों पर भी बात करती है किताब।
हाँ, और एक बहुत जरूरी सलाह देती है, आय के कई स्रोत बनाए, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम।
मतलब सिर्फ ओरिजिनल पेंटिंग या मूर्ति बेचने पर निर्भर न रहें।
हाँ,
सोचें, क्या आप अपनी आर्ट के प्रिंट्स बेच सकते हैं? क्या आप अपने डिजाइन लाइसेंस कर सकते हैं किसी कंपनी को? क्या कमीशन पर काम ले सकते हैं या वर्कशॉप सिखा सकते हैं?
इससे स्थिरता आती है।
बिल्कुल।
और किताब अलग अलग बिक्री चैनलों के बारे में भी बताती है, जैसे सीधे अपनी वेबसाइट से बेचना, आर्ट फेयर में स्टॉल लगाना, गैलरी के जरिए बेचना या दुकानों को थोक में सप्लाई करना। सबके अपने फायदे नुकसान हैं।
और जब बिजनेस चलने लगे तो उसे आगे बढ़ाने के बारे में भी कुछ है, स्केल करने के बारे में?
हाँ, आखिरी हिस्सा उसी पर है। कब और कैसे अपनी टीम बनाएं अगर जरूरत हो, नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कैसे लाएं, नए बाजारों में कैसे जाएं।
मतलब ग्रोथ की स्ट्रेटजी।
बिल्कुल। और एक बात जो पूरी किताब में बार बार आती है वो है सीखते रहना।
हाँ, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है,
कला की दुनिया भी, बिजनेस की दुनिया भी, तो अपडेटेड रहना, नई चीजें सीखना, बदलते रहना बहुत जरूरी है।
यहाँ वो सफलता वाली परिभाषा भी फिट बैठती है।
हाँ, कि रचनात्मक व्यवसाय में सफलता प्रसिद्ध होने के बारे में नहीं है, यह एक स्थायी अभ्यास बनाने के बारे में है जो आपके कलात्मक लक्ष्यों और व्यक्तिगत जीवन का समर्थन करता है।
सही। तो अगर इन सब बातों को समेटें तो क्या मुख्य संदेश निकलते हैं इस किताब से? आपके लिए सबसे बड़ा संदेश क्या रहा?
मेरे लिए तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि बिजनेस और क्रिएटिविटी दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। एक अच्छा बिजनेस प्लान आपकी कला को उड़ने के लिए पंख दे सकता है।
और मेरे लिए जो बात सबसे गहरी लगी वो है प्रामाणिकता की ताकत। आपकी असली आवाज ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय अपने आप पर भरोसा करना। ये बहुत आजादी देने वाली सोच है ना?
बिल्कुल। और एक और जरूरी बात है, स्थिरता और विविधीकरण। मतलब अपने काम की सही कीमत समझना और आय के कई रास्ते बनाना, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जरूरी है।
अच्छा, ये तो हो गया बड़े विचार। लेकिन इनको असल जिंदगी में कैसे उतारें? कोई छोटे प्रैक्टिकल कदम?
हाँ, कई हैं। जैसे सबसे पहले तो अपनी प्राइसिंग चेक करें, कोई एक आर्टवर्क लें और ईमानदारी से उसकी लागत निकालें, समय, सामान, किराया, बिजली, सब कुछ, और फिर मुनाफा जोड़ें, देखिए क्या कीमत आती है,
शायद आंखें खुल जाएं।
हो सकता है। दूसरा कदम, अपने दर्शकों को थोड़ा और जानने की कोशिश करें, एक छोटा सा ऑनलाइन पोल चला दें या बस ध्यान दें कि सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट पर लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं।
तीसरा,
अपनी ऑनलाइन दुकान ठीक करें, वेबसाइट अपडेट करें, पोर्टफोलियो साफ सुथरा रखें, नियमित रूप से कुछ पोस्ट करें, एक ईमेल लिस्ट शुरू करना और महीने में एक न्यूज़लेटर भेजना भी बहुत पावरफुल हो सकता है।
छोटे कदम पर लगातार। और फाइनेंस के लिए,
एक अलग बैंक अकाउंट खोल लें अपने बिजनेस के लिए। ये बहुत सिंपल लगता है पर यह एक बड़ा मानसिक कदम है। या आय व्यय लिखने के लिए एक स्प्रेडशीट बना लें।
हाँ, ये सब दिखाता है कि आप अपने काम को गंभीरता से ले रहे हैं।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे अहम बात निकल कर आई है वो ये कि कलाकार और उद्यमी ये दो अलग टोपियां नहीं हैं।
नहीं,
ये एक ही व्यक्ति के दो पहलू हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं।
सही कहा, रचनात्मकता और व्यावसायिकता एक दूसरे को मजबूत करते हैं।
और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे है वो सशक्तिकरण वाली भावना, एम्पावरमेंट। ये किताब कलाकारों को बेचारा महसूस करने की जगह ताकत देती है।
हाँ, नियंत्रण अपने हाथ में लेने की।
बिल्कुल, कि आप अपनी कला से सिर्फ दुनिया को रंगीन नहीं बना सकते बल्कि अपना जीवन भी अच्छे से चला सकते हैं। वो भूखे कलाकार वाली बात अब पुरानी हो गई है।
एकदम। ये किताब दिखाती है कि एक सफल, संतुष्टि देने वाला और टिकाऊ क्रिएटिव करियर बनाना बिल्कुल संभव है।
बस चाहिए सही सोच, सही प्लानिंग और मेहनत।
हाँ, और ये किताब उस रास्ते का एक बहुत अच्छा नक्शा है।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये बातें हमारे सुनने वालों के रचनात्मक सफर में कुछ मदद करेंगे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।